ब्रह्मराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद विदुर के अन्य प्रश्न श्लोक क्रमांक 4 और 5। उस समय भगवान शंकरषण अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। विद्वत जन जिनका निरूपण भगवान वासुदेव के नाम से करते हैं, किंतु इन बहुज महर्षियों के कल्याण की वृद्धि के लिए उन्होंने अपने कमल जैसे नेत्र किंचित खोले और उपदेश देना आरंभ किया। श्लोक क्रमांक 5।
स्वधूमुदाद्रो स्वजटाकलाप उपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्ति राजकन्या वाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महर्षिगण उच्चतम लोकों से लगाकर निम्नतर लोकों तक गंगा के जल में अवगाहन करते हुए आए थे, इसलिए उनके सिरों पर शोभित जटाकलाप भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरणारविंदों का स्पर्श किया जिनकी अर्चना नागराज की कुमारियां अभीष्ट वर की प्राप्ति के लिए अनेक सामग्रियों से करती हैं। तात्पर्य, गंगा का जल सीधे भगवान विष्णु के चरणारविंदों से प्रवाहित होता है और इसका मार्ग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक जाता है। महर्षिगण प्रवाहमान गंगा जल का उपभोग करते हुए सत्यलोक से आए थे। उनके प्रव्रजन की यह प्रक्रिया सहस्यमय योग की शक्ति के द्वारा संभव हुई थी। यदि कोई सरिता सहस्र योजन तक बहती होती है तो एक पूर्ण योगी केवल जल में डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच सकता है। गंगा की एकमात्र ऐसी दिव्य नदी है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रवहमान है और महर्षिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से निखिल विश्व में विचरण करते हैं। यह कथन कि उनकी जटाएं भीगी हुई थीं, इन्हें सूचित करता है
कि वे भगवान विष्णु के चरणारविंद से निस्सृत होने वाली गंगा जल में ही भीगी हुई थीं। जो भी व्यक्ति गंगा के जल को अपने सिर से स्पर्श करता है वह निश्चय ही भगवान के चरणारविंद का प्रत्यक्ष स्पर्श प्राप्त करता है और इस प्रकार सब प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। यदि गंगा जल में स्नान करने के पश्चात अथवा सब पापों से विनिर्धूत मल होने के पश्चात मनुष्य अपने को आगे चलकर पापों से बचाता रहता है जो निश्चय ही वह मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह पुनः पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसका गंगा जल में स्नान उस हाथी के स्नान के समान है जो चारुता के साथ नदी के जल में स्नान करता है किंतु तत्पश्चात अपने को धरती की धूल से ढककर सारी शोभा बिगाड़ लेता है। अनुवाद दोहराइएगा। हरे कृष्णा। तो यहां ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से चार कुमार बहुत दूर से संकर्षण यानी भगवान शेष अनंत शेष उनसे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, उनका प्रवचन सुनने के लिए आए हुए हैं। अभी चार कुमार यहां बताया जाता है कि तपलोक या सत्यलोक से आ रहे थे। सत्यलोक मतलब ये ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक, सत्यलोक पे जनलोक, तपलोक, महालोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक, तो इतनी ऊपर है सत्यलोक। फिर भी इतनी दूर से ये चार कुमार केवल हरि कथा सुनने के लिए आए। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं अरे हमें मंदिर जाना है, इतना दूर है, कौन जाएगा वो गाड़ी, रेलगाड़ी में फिर से गाड़ी बदलो, बस में जाओ, रिक्शा में जाओ, घर में बैठ के आराम करते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि भगवत कथा सुनने के लिए कितनी रुचि होनी चाहिए। चार कुमार इस एक शहर में नहीं थे, ब्रह्मांड के कोने कोने से चले आए। उसी प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत का उपदेश दे रहे थे तो उस समय सारे ब्रह्मांड के कोने कोने से अलग अलग लोकों से सब महर्षिगण एकत्र हुए केवल सुखदेव महाराज का प्रवचन सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें कितना ज्यादा सीरियस होना चाहिए ये कृष्ण कथा सुनने के लिए, भक्तों के संग में आने के लिए कितना आतुर होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर हमें कष्ट उठाना पड़े तो ये बहुत कम कीमत है। इतना छोटा, इतना कम कष्ट उठाने पर हमें इतना अमूल्य धन मिल रहा है कृष्ण कथा का, कृष्ण भक्ति का। तो हम जो धन हमें मिल रहा है उसकी तुलना हम वो कष्ट से नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है तो भक्तों के संग में जाना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि कितना दूर जाना है, बस चले ही जाना चाहिए। जिस प्रकार से चार कुमार यहां आए हैं, अभी जिस प्रकार से चार कुमार आए हैं, भले हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वो गंगा जल में अपने आप को उन्होंने डुबो दिया और बस यहां पे चले आए। तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये योग सिद्धि के द्वारा होता है। वास्तव में जो पुराने जमाने के योगी थे उनके भीतर बहुत शक्तियां थी और ऐसे शक्तियों से वो ऐसी चीजें आराम से कर सकते थे। प्रभुपाद जी बताते थे कि उनके पिताजी बताया करते थे कि कलकत्ता में एक योगी हुआ करते थे। हर रोज वो कलकत्ता के पास में जो हुगली नदी है, जो गंगा ही है, उसमें डुबकी लगाते थे और सीधे प्रयाग पहुंच जाते थे। और प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर से चुपके से आ जाते थे वापस कलकत्ते में। उसी प्रकार से प्रयाग से हरिद्वार अप डाउन करते थे, जैसे यहां लोग विरार से चर्चगेट अप डाउन करते हैं फास्ट गाड़ी में, उसी प्रकार से ये योगी जो है हरिद्वार से प्रयाग या कलकत्ता से प्रयाग अप डाउन करते थे रोज। लेकिन उनको ऐसे भीड़ का कष्ट नहीं होता था, टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, केवल अपने योग शक्ति द्वारा एक सेकंड में जाके एक क्षण में जाके वापस आ सकते थे। यह है योग शक्ति के द्वारा। तो इसी प्रकार से ये चार कुमार जो हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र हैं, वो भी इसी प्रकार से चले आए। ये चार कुमार वास्तव में हैं कौन? वास्तव में ब्रह्मा जी आप जानते हैं स्वयं भू हैं, ये सारे ब्रह्मांड के पिता हैं, उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हें प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिए, संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार कुमार को उत्पन्न किया, उनके सबसे पहले चार पुत्र हुए, और ये चार पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि अभी आप प्रजा की उत्पत्ति करो, विवाह यज्ञ में शामिल हो जाओ, गृहस्थ बनो और फिर संतान की उत्पत्ति करो। तो इस समय चार कुमार जो थे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कहने लगे नहीं नहीं हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, हम तो ब्रह्मचारी ही रहेंगे, ये आज्ञा हमें आप मत दीजिए। तो शास्त्र में बताया है कि गुरु की ये एक आज्ञा है जिसका पालन नहीं करेंगे तो चलता है, बाकी सारे आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। अगर गुरु बताते हैं ये करो वो करो, करना ही चाहिए, लेकिन गुरु बताते हैं विवाह करो, अगर नहीं करना है तो ना बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र में यह भी बताया है, महान आचार्य ने समझाकर बताया है कि हम ना उस समय कर सकते हैं जब हम चार कुमार की तरह हैं। अगर चार कुमार की तरह नहीं है हम, और गुरु अगर कहे कि विवाह करो तो करना चाहिए, अगर चार कुमार की तरह हैं तो इनकार कर सकते हैं। तो खैर चार कुमारों ने इनकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी तो पिता है, जब कोई लड़का कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा और ये चार लड़के चारों कह रहे नहीं करेंगे विवाह, तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। तो क्रोधित तो हुए लेकिन अपने आप फिर संभल गए, अपने आप को संभाल लिया उन्होंने, लेकिन अपने आंखों के बीच से जो जगह है वहां क्रोध निकला और वो शिवजी के रूप में प्रकट हुआ, रुद्र वहां प्रकट हुए और रोते रोते आए, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र, रोदती तो रुद्र शिवजी, तो वो तो दूसरी कथा है। लेकिन खैर ये है चार कुमारों की कथा। तो चार कुमारों ने कहा कि हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनेंगे रहेंगे और हम 5 साल की उम्र तक हम इसी प्रकार से शरीर धारण करके रहेंगे। हालांकि चार कुमार ब्रह्मा जी के सबसे बड़े या वरिष्ठ पुत्र हैं, फिर भी दिखने में केवल 5 साल के बालक लगते हैं। उनका शाश्वत रूप ऐसा ही है, हालांकि वे हजारों करोड़ों साल उनकी आयु है, लेकिन 5 साल के बालक के समान लगते हैं वो, और पक्के ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, बड़े ऋषि हैं, योगी हैं। तो ये भागवत की कथा सुनने के लिए वो लोग कैसे आए? गंगा जी के जल का सहारा लेकर आए, जैसे योगी यहां जाते हैं उसी प्रकार से वहां गंगा जी से चले आए। अब ये प्रश्न हो सकता है कि गंगा जी से अगर हमें हरिद्वार से प्रयाग जाना है, कलकत्ता से हरिद्वार जाना है, ये एक बात है, गंगा तो यहां पृथ्वी पर बहती है, लेकिन तपोलोक से पृथ्वीलोक गंगा कहां बहती है? ये प्रश्न हो सकता है ना। लेकिन शास्त्र में बताया है और यहां इस बात की पुष्टि कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि गंगा जी एकमात्र नदी है जो सारे ब्रह्मांड में बहती है, तपोलोक से लेकर नीचे तक रसातल तक सब तक वो गंगा की नदी का जल जो है वो बहती है। गंगा जी वास्तव में ये विरजा नदी है जो भौतिक ब्रह्मांड और भगवान के धाम में जो नदी बहती है, जो कारण सागर है, उसके जल को कभी विरजा नदी कहते हैं। जब बलि महाराज को शिक्षा देने के लिए बलि महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने वामन देव का अवतार लिया और उन्होंने तीन कदम लिए, वो कथा तो आप जानते ही हैं। तो दूसरे कदम लेने पर जब वामन देव ने अपने पैरों को दूर किया और कदम रखा तो उनके चरण कमलों ने क्या किया, ब्रह्मांड में के आवरण में छेद कर दिया और उस छेद में से विरजा का जल जो है उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हुए ये भौतिक ब्रह्मांड के अंदर आ गया, ऊंचे लोक से लेकर ऊंचे से नीचे 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 आते गया, स्वर्ग लोक तक पहुंच गया लेकिन उसके नीचे नहीं आया। तो उस समय क्योंकि गंगा जी वो जल तो है विरजा का वैसे ही पवित्र है, कारण सागर है, उसमें महाविष्णु विश्राम करते हैं योग निद्रा में, और उसके बाद वामन देव के चरण कमलों का स्पर्श हुआ है तो चरणामृत हो जाता है। जैसे हम चरणामृत यहां जो मंदिर में सबको देते हैं, इसका महत्व क्या है, चरण अमृत भगवान श्री हरि के चरणों का अमृत है ये, इसलिए इसका पान करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है। तो उसी प्रकार से वामन देव के चरणों को स्पर्श करते हुए ये विरजा नदी जो है भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी और उनका नाम हुआ गंगा देवी। इस प्रकार से गंगा देवी ने भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया। तो ये भी चरणामृत है, गंगा जल का हर एक बूंद जो है वो अमृत है, साधारण नहीं है ये। और इस प्रकार से गंगा जी सूक्ष्म रूप में बहती रहती है, सूक्ष्म मतलब उच्च लोकों के जो निवासी हैं उनके लिए सूक्ष्म नहीं है, हमारे लिए सूक्ष्म है क्योंकि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, न ही तो हमारे सीमित बुद्धि से हम समझ पाते हैं कि एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक नदी बह कैसे सकती है, क्योंकि हमारा अनुभव जो है वो बहुत इस ब्रह्मांड इस पृथ्वी लोक तक सीमित है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अनेक लोक हैं ब्रह्मांड में और इन सारे ब्रह्मांडों में सूक्ष्म तरीके से नदियां बहती हैं, नाना प्रकार की चीज वहां है जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया हुआ है। तो इस प्रकार से गंगा नदी सारे ऊपर के लोकों में बहती रहती है और उन सारे लोकों को पवित्र करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बहते हुए नदियों में से वही हैं गंगा जी। कृष्ण भगवान उद्धव को भी भागवत में बताते हैं कि सारे पवित्र नदियों में से मैं ही गंगा जी हूं, गंगा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गंगा जी में भी वही शक्ति है हमें भक्त बनाने की। यही गंगा जी का महत्व। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जब चार चीजें होती हैं तो कृष्ण भगवान अवश्य वहां उपस्थित होते हैं, और वो क्या है, एक है श्रीमद् भागवत, दूसरे हैं तुलसी देवी, तीसरे हैं उनके भक्त अर्थात वैष्णव, और चौथा है गंगा देवी। जहां भी ये चार चीजें रहते हैं भगवान श्री कृष्ण अवश्य वहां उपस्थित रहते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर आगे ये बताते हैं कि अर्च विग्रह जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति श्री मूर्ति, जब हम श्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके बाद हम अर्चना शुरू करते हैं, लेकिन ये चार चीजें जो है श्रीमद् भागवत, तुलसी जी, वैष्णव और गंगा जी, जब से वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब से पूजनीय है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात बताई है वृंदावन दास ठाकुर ने कि जब से ये चार चीजें ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं तब से पूजनीय हो जाती हैं, क्योंकि एक वो कृष्ण के प्रतिनिधि तब से उसी क्षण से हो जाते हैं, इनका ये महत्व है। इसलिए गंगा जी की महिमा सारे शास्त्र में फैली हुई है, कोई भी पुराण पढ़े उसमें गंगा जी की महिमा तो निश्चित रूप से उसका वर्णन तो होगा ही होगा। इसलिए अपुराण ने बताया है कि गंगा जी का स्मरण करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं, हजारों योजना दूर यानी हजारों मील दूर से गंगा गंगा पुकारने से हमारे और ज्यादा पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के थोड़े बूंद भी सर पे डालने से और ज्यादा जो है पाप दूर हो जाते हैं। और गंगा जी में स्नान करेंगे तो और कितने सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो गंगा जी का जल का पान करना, गंगा जी में स्नान करना और गंगा जी का जल गंगा जी को ही अर्पण करना, ऐसे कार्य करने से बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। यह है गंगा जी की शक्ति। इसलिए गंगा जी जो है इसको हमें कभी साधारण जल नहीं समझना चाहिए। हर समय गंगा जी का जल जो है पवित्र और आध्यात्मिक रहता है। हम अभी कभी गंगा जी के किनारे में जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा जी में कितना मल है। कभी कोई लाश वहां पड़ी रहती है तो कभी क्या क्या नाना प्रकार की गंदगियां वहां पड़ी रहती हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवान का भक्त है, जिसके हृदय में सच्चा ज्ञान है, वो इस मल गंदगी से प्रभावित न होकर गंगा जी में फिर भी जाकर मल को हटाकर उसमें स्नान करेगा। यह है ज्ञान, दिव्य चक्षु। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा अरे छी 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 ये क्या है, ये जल है, ये तो हमारे घर के पास वो गटर है उसके समान ही है। लेकिन जो ज्ञान के चक्षु से देखता है वो कभी गंगा जी में स्नान करने से हिचकिचाएगा नहीं, भले ही गंगा जी का जल कितना ही भौतिक दृष्टि से गंदा क्यों न दिखता हो। एक बार गरुड़ जी जो हैं एक सांप को शिकार करके उड़ रहे थे। आपको तो मालूम है कि गंगा जी गरुड़ जी तो सांप खाते हैं। तो जब वो गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे थे तो उस समय सांप का जो पूंछ है एक छोटा सा हिस्सा गंगा जी के जल को स्पर्श करके चला गया। और जैसे ही स्पर्श हुआ तो सांप का शरीर जो है अचानक एक आध्यात्मिक शरीर बदल गया और चार हाथ भुजाओं वाले एक वैकुंठ स्वरूप उसने धारण कर लिया। गरुड़ जी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, बड़े आश्चर्यचकित रह गए गरुड़ जी। लेकिन देखा कि वैकुंठ का रूप है, चार भुजाओं वाला आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पीठ में बिठाकर वो वैकुंठ ले गए और वैकुंठ में डाल दिए। तो उसको मारकर खाने के बजाय अपने पीठ पर रख के उनको वैकुंठ ले गए। ये है गंगा जी का प्रभाव। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी गंगा जी की बहुत महिमा की है, का वर्णन किया है। कहते हैं कि गंगा जी के हर बूंद से कृष्ण का नाम आता है। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। चैतन्य महाप्रभु तो नवद्वीप में थे, मायापुर में जो बंगाल में है, वहां से गंगा नदी बहती है। तो कहते हैं कि हर एक बूंद से कृष्ण का नाम आता है। और जिसको कान है सुनने के लिए गंगा जी के किनारे किनारे में जाएगा तो कृष्ण कृष्ण नाम सुनेगा। लेकिन हमारे कान तो बहुत स्थूल है, हमारे कानों में तो सेवल टीवी के गाने यहां वहां से अंदर जाते हैं, वो कृष्ण का नाम हर कण में नहीं जाता है। गंगा जी के किनारे जाते हैं तो कृष्ण का नाम सुनाई नहीं पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु गंगा जी को अपने गुरु मानते थे और हर समय गंगा जी में स्नान करने के पहले प्रणाम करते थे, मंत्र कहते थे, बहुत सम्मान देकर फिर उसमें गंगा जी के जल में वो स्नान करते थे। वास्तव में गंगा जी सोच रही थी कि कृष्ण भगवान जब वृंदावन में प्रकट हुए और नाना प्रकार की लीला की तो उन्होंने यमुना जी के जल में स्नान किया, नाना प्रकार की लीलाएं वहां की। तो गंगा जी सोच रही थी कि ब्रज लीला में भाग लेने का मौका मुझे नहीं मिला, यमुना जी को मिल गया, तो मैं भी चाहती हूं कि कृष्ण लीला मेरे जल के अंदर भी हो जाए, मैं भी उन लीलाओं का स्पर्श करूं, का दर्शन करूं। तो गंगा जी ने बहुत तप किया, तपश्चर्या किया और फिर कृष्ण ने कहा ठीक है, अभी मैं प्रकट हूंगा नवद्वीप में और तुम मेरे करीब से ही तुम वहां चलती रहोगी, बहोगी, तुम्हारे जल वहां से बहता हुआ जाएगा, तो मैं तुम्हारे जल में आके स्नान करूंगा। और इसीलिए जो है भगवान वहां जाके स्नान करते थे। तो गंगा जी के सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब उस इलाके में गंगा जी हमेशा हर साल उसका जल बाढ़ में आ जाता है और बहुत लंबे लंबे जगह तक, बहुत किलोमीटर तक पानी जो है फैल जाता है।
और कई बार हमारे इस्कॉन मायापुर मंदिर में भी जो है पानी आ जाता है, 3-4 फुट तक पानी भर जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मायापुर मंदिर में, हमारे इस्कॉन मंदिर में, श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखियां जो हैं, उनका सिंहासन बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है। क्योंकि गंगा जी जब अंदर चली आती हैं, तो फिर जब फ्लड होता है, 2-3 फुट का फ्लड होना तो हर साल प्राय हो जाता है, तो इसलिए ऊंचा किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गंगा जी का जल वहां तक पहुंच जाता है, और वहां के पुजारी जो हैं वो बता रहे थे कि गंगा जी भी बढ़ती रहेंगी, राधा माधव जी के चरणों का स्पर्श करेंगी तब संतुष्ट हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे वापस। और ठीक ऐसा ही हुआ। तो इसी प्रकार से एक गंगा जी ने वहां तक पहुंची, स्पर्श किया और चली गई, वापस नीचे हो गई। तो गंगा जी, गंगा जी की लीला है भगवान के साथ में। तो हम लोग केवल बीच में परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या होगा, क्योंकि मैनेजमेंट करना पड़ता है ना भक्तों को। सब पेड़ खराब हो गए, बगीचे खराब हो गए, और सबको नौका में घूमना है, तो तकलीफ बहुत हो जाती है। लेकिन ये गंगा जी और कृष्ण भगवान के बीच में लीला चल रही है, तो इसमें भक्त लोग क्या कर सकते हैं, भक्त लोगों के दर्शन कर लेते हैं। तो ये है गंगा जी के सुंदर कार्य। तो गंगा जी आए कैसे ये स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक, इसकी भी एक सुंदर लीला है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था राजा सगर। अब ये सगर नाम उनका क्यों हुआ, ये भी एक विचित्र बात है। उनके जो पिता थे वो भी एक बड़े राजा थे, और जब ये सगर राजा अपनी मां के गर्भ में थे, तो राजा की अन्य पत्नियों ने उस रानी के भोजन में विष मिला दिया। ऐसा अक्सर होता है, एक रानी दूसरे रानी से ईर्ष्या करके विष डाल देती है। कई बार ऐसे भागवत में कथा आ जाती है। तो विष तो पान, विष का तो खा लिया उस रानी ने, और बच्चे के अंदर भी विष चला गया, लेकिन बच्चा जीवित रहा, बच्चा मरा नहीं। इसलिए उसका नाम आया सगर, जिसके अंदर गर अर्थात विष है, तो उनका नाम आ गया राजा सगर। तो राजा सगर भगवान के भक्त थे, और उन्होंने कई प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, जब घोड़े को छोड़ देते हैं, घोड़े को छोड़ते हैं, जहां भी घोड़ा चला जाए अपनी स्वेच्छा से, वो इलाका जो है वो राजा का हो जाता है। तो एक बार घोड़ा कहीं घूमते घूमते कहां चला गया, कुछ पता नहीं चला। तो सगर महाराज के एक ईरानी थी जिनका नाम था सुमति। सुमति से राजा सगर के 7,000 पुत्र थे। तो ये 7,000 पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर ये अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को ढूंढते ढूंढते सारे पृथ्वी लोक में घूमे, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने पृथ्वी में एक बहुत गहरा गड्ढा भी खोद दिया, और ये गड्ढे का नाम हो गया सागर बाद में। तो सगर से आया सागर, है ना, सागर में पानी है ना, तो महाराज सगर से आया। तो इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते गंगा सागर तक पहुंच गए, और वहां कपिल देव जो है वो अपने आश्रम में भजन करते हुए बैठे थे ध्यान में, और घोड़ा भी वहां था। तो घोड़ा वास्तव में इंद्र ने चोरी कर लिया था और वहां जानबूझ के रख दिया था। अब आपको मालूम है कि जब कोई ज्यादा अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, ज्यादा तप कर लेता है, तो इंद्र भी बड़े घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे कुर्सी का खतरा है, किस्सा कुर्सी का हो जाता है, खतरा हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा। तो इंद्र जी आके फिर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने घोड़ा वहां छुपा दिया, और जब सगर महाराज के 7,000 पुत्र वहां आए, उन्होंने घोड़े को देखा और सोचा कि ये मुनि, ये ऋषि ने ये घोड़े को चोरी किया है, मारो, चिल्लाए, चलो मारो, मारो इनको, मारो। और मारने आए तेजी से उनको, लेकिन वो तो भगवान है, भगवान के अवतार है और तपस्वी ऋषि मुनि है, उनकी बड़ी शक्ति है, लेकिन उनकी ईर्ष्या और अपराध के बल से ही इतनी जोर से अग्नि उत्पन्न हुई उनके हृदय, उनके शरीर के अंदर, कि उस अग्नि से सब जल के राख हो गए। सारे 7,000 जो पुत्र थे महाराज सगर के सारे जल के राख हो गए तुरंत उसी क्षण। और जब सगर महाराज को पता चला तो बहुत वो अफसोस में पड़ गए कि क्या किया जाए। उस समय उनके दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था केशिनी। अब केशिनी का एक पुत्र थे जिनका नाम था असमंजस। तो असमंजस वो भी एक बड़े विचित्र प्रकार के योगी थे। पिछले जन्म में वो योगी थे लेकिन इस जन्म में जाति स्मर थे। जाति स्मर अर्थात उनके पिछले जन्म का याद था कि मैं कौन था। मैं योगी था और उनके बड़े शक्ति भी थी, योग शक्तियां थी। तो अपनी योग शक्ति के द्वारा वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे और पिताजी गुस्से होकर उनको उन्होंने भगा दिया और कहा कि वापस नहीं आना। तो असमंजस के पुत्र जो थे अंशुमान, उनको सगर महाराज ने कहा कि जाके कुछ करो मेरे पुत्रों के बारे में। तो फिर अंशुमान वहां जाकर कपिल देव के सामने आए, दंडवत प्रणाम किया और सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की उन्होंने कपिल देव के लिए। और कपिल देव इन प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ठीक है, ये घोड़ा तुम वापस ले लो। मैं तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे नम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। घोड़े को लेकर वापस चले जाओ। लेकिन अंशुमान वहीं खड़े रहे। अच्छा, मैं समझता हूं, तुम तुम्हारे पितरों के लिए जो 60,000 सगर महाराज के पुत्र जिनका वध मैंने किया है, जिनका वध हो गया है, उनके तुम उनको पावन करने के लिए चाहते हो तुम, तो ठीक है, ये एक तरीके से हो सकता है। और वो क्या है तरीका? जब गंगा जी का जल का स्पर्श होगा इनके ये राख से, तब उनका वो पावन हो जाएंगे। तो अंशुमान सोचने लगे कि कैसे किया जाए। तो कपिल देव को प्रार्थना करके वो चले गए। तो बहुत उन्होंने प्रयास किया गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उनके पुत्र थे जिनका नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप ने भी बहुत प्रयत्न किया लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। और भगीरथ ने एक प्रार्थना तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, और तपस्या से गंगा जी बड़े प्रसन्न हो गई और गंगा जी प्रकट हुई राजा भगीरथ के सामने और कहने लगे कि क्या वर दे सकती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो अपनी समस्या बता दी राजा ने, भगीरथ ने। तो गंगा जी ने कहा कि मैं आ तो सकती हूं पृथ्वी लोक पर, लेकिन मेरी दो समस्याएं हैं। अगर इन दो समस्याओं का समाधान तुम कर पाओगे तो मैं इस संसार में आ जाऊंगी। तो कौन सी हैं वो दो समस्याएं? पहली समस्या ये है कि मेरे जल का प्रवाह इतना तेज है कि अगर मैं स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी लोक में आऊंगी तो पृथ्वी लोक में छेद करके मैं तो नीचे सीधा पाताल लोक में, नरक लोक में चले जाऊंगी, इतना प्रवाह तेज है। तो पानी के प्रवाह को रखने के लिए, जल को पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति में चाहिए, इसका उपाय आप ढूंढो। और दूसरी बात, जब मैं पृथ्वीलोक में आके मेरे जल जब बहने लगेंगे वहां पर, तो सारे पापी लोग जो है मुझ में आके स्नान करेंगे और अपने पाप मेरे पवित्र जल में जो है धो डालेंगे। तो पाप का बोझ मेरे मुझ में बढ़ता जाएगा और मेरे सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई उपाय ढूंढो जिससे ये सारे पाप मुझसे फिर से धुल जा सके, ताकि मैं जो पाप ले रही हूं उनका ये पाप भी मुझसे कोई ले ले, नहीं तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। तो भगीरथ महाराज ने कहा, हाँ माता जी, ये आप बहुत आसानी से संभव हो जाएगा। शिव जी हैं, बड़े दयालु हैं। शिव जी आकर बैठेंगे तो अपनी जटा में आपके पानी को वो स्वीकार करेंगे, तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है, जल के प्रवाह को वो रोक लेंगे तो आपके पहले समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी समस्या जहां तक इसका संबंध है, तो राजा भगीरथ ने कहा, इसकी भी चिंता नहीं कीजिए, अभी पृथ्वी लोक में बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, भगवान के बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं जिनका शुद्ध हृदय है, जब पापी स्नान करते हैं आपके जल में तो ये लोग भी तो आएंगे आपके जल में स्नान करने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल पापी लोग स्नान करेंगे, बड़े बड़े भक्त आकर भी आपके जल में स्नान करेंगे।
जब वो स्नान करेंगे तो वास्तव में आपके सारे पाप जो है आपके नदियों में आपके पानी में सब वो उसको साफ करा देंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर महाराज वे बताते हैं भवपुदा भागवतास, वो कहते हैं कि आप वो अपने मामा जो हैं वो विदुर को बताते हैं कि वास्तव में कि आप जैसे भक्त जो हैं श्री श्री राधा गिरिधारी की श्री श्री राधा जगन्नाथ बल श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की वो कहने लगे तीर्थ कुर्वन्ती तीर्थानी स्वयं तस्थ गदाभ्रता। वो कहने लगे कि ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वही स्वयं तीर्थ स्थान है और तीर्थ स्थान को वास्तव में तीर्थ स्थान बनाते हैं। वो जो जगह में वो जाते हैं वो जगह तीर्थ स्थान हो जाता है। क्यों? स्व अंतःस्थेन गदाभ्रतः। स्व अंतःस्थेन मतलब कि उनके हृदय में साक्षात गदाभ्रतः गदाधर, गदाधर मतलब कौन? विष्णु। गदा को धारण करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले श्री विष्णु उनके हृदय में विश्राम करते हैं, विराजमान हैं। इसीलिए जो भी जगह वो जाते हैं वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। दूसरे शब्दों में युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से कह रहे थे कि आप जैसे जो महान भक्त हैं आप तो चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं, तो हमें कोई तीर्थ स्थान के जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ स्थान स्वयं जो है चले आते हैं। आप इतने कृपालु हैं कि तीर्थ स्थान होते हुए आप सब जगह जाके कृपा देते हैं। तो इसीलिए जब ये तीर्थ स्थान चलते फिरते तीर्थ स्थान जो है भगवान के शुद्ध भक्त गंगा जी में जाके स्नान करते हैं तो सारे पाप जो भी भरे हुए वहां वो पवित्र कर देते हैं। गंगा जी के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गंगारा पराश होइले पवित्र पशाते पवन पवित्र दर्शन पवित्र करो तो मरगो। नरोत्तम दास ठाकुर का है ना ये भजन। तो वो कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही गंगारा पराश होइले पश्चात पवन। वो कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन हे वैष्णव हे भगवान के शुद्ध भक्त आपका दर्शन करने मात्र से ही पावन हो जाते हैं हम। तो देखिए गंगा जी के स्नान करने से इतना लाभ तो होता है, लेकिन गंगा जी भी वैष्णव के ऊपर निर्भर हैं। तो वैष्णव की महानता देखिए कितनी महान होते हैं वैष्णव कि गंगा जी को भी वो पापों से मुक्त कर देते हैं। यह है वैष्णव की महिमा। तो इस प्रकार से राजा भगीरथ ने राजा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और शिव जी का दूसरा नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब है जो आशु बहुत जल्दी संतोष हो जाते संतुष्ट हो जाते हैं। तो राजा भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए और कहा कि ठीक है तथास्तु, तुम चाहते हो कि मैं गंगा जी का जल को मैं रोक दूं तो ठीक है। फिर कैलाश पर्वत पे बैठे शिव जी और गंगा जी को अनुमति दी कि आप आइए और मेरे जटाओं में आप आके आप प्रवेश कीजिए। तो आ गए गंगा जी और फिर वहां से गंगा जी शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये इतिहास है जो कि श्रीमद् भागवत में दिया है कि किस प्रकार से गंगा जी ये सागर ये भौतिक ये पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। तो गंगा जी ये इतिहास बहुत ही अच्छा है और जो गंगा जी के इतिहास के बारे में सुनता भी है उसके पाप धुल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जानना है कि गंगा जी में स्नान करने की बात दूर है, लेकिन गंगा जी के बारे में श्रवण करने से भी, स्मरण करने से भी, चिंतन करने से भी हमारे पाप धुल जाते हैं।
लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी एक चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? वो कहते हैं कि कई लोग आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर से बाहर जाकर पाप करते हैं। तो पाप करने से, गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, कि फिर से पाप करने से क्या फायदा है? पाप करते हैं, गंगा जी में स्नान करके पाप को धो डालते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से स्नान करते हैं, तो ऐसे करने से कोई लाभ नहीं है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसके बारे में भी एक सुंदर चर्चा है श्रीमद् भागवत में छठे स्कंद में, और वे चर्चा हो रही है राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज के बीच में। अभी एक पांचवें स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी महाराज ने नरक लोकों का वर्णन किया था। किस सिलसिले में किया था? सुखदेव महाराज बता रहे थे कि वास्तव में यह संसार में पाप करना स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति यह संसार में पाप करता है, जाने अनजाने में पाप करता है, क्योंकि यह संसार ही भगवान ने ऐसा बनाया है। पाप करने से कोई अपने आप को रोक नहीं सकता है, किसी न किसी प्रकार से हम पाप करके ही रहेंगे। घर में आप झाड़ू मार रहे हैं, थोड़े कीड़ों को मार रहे हैं। आप घर में पानी उबाल रहे हैं, कीड़े मर रहे हैं। आप पानी एक पात्र से दूसरे पात्र में डाल रहे हैं, तो आप कितने कीड़ों को मार रहे हैं, जर्म्स को मार रहे हैं, पाप हो रहे हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके पैरों के तले कितने सारे चींटियां वगैरह कुचले दिए जाते हैं। तो नाना प्रकार के पाप हम हर क्षण करते हैं ये संसार में। सांस लेते हुए भी हम कितने कीटाणु को मारते हैं क्या पता। तो जीते जी हम इतने पाप करते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लेते हैं। तो पाप और पुण्य ये दोनों का चक्कर चलता है। जिसने ज्यादा पुण्य किए हैं वो सत्य गुण में स्थित होता है। जो ज्यादा थोड़े पाप और थोड़ा पुण्य करता है वो रजगुण में स्थित होता है, और जो बिल्कुल पाप ही करता है वो तमोगुण में स्थित होता है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में बताते हैं ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्थः, जो सत्वगुण में स्थित होते हैं वो ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में वो स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि ऐसे ऊंचे लोगों की प्राप्ति उनको होती है मृत्यु के बाद में। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो रजगुण में स्थित हैं, जो थोड़ा पाप करते हैं थोड़ा पुण्य करते हैं, उनको पृथ्वी लोक में जन्म मिलता है। हम जैसे लोगों को जिन्होंने पाप भी किया है पुण्य भी किया है, और फिर जघन्य गुणवत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसा, जो बहुत ही पापी हैं उनको कौन से गति की प्राप्ति होती है? अधो गच्छन्ति तामसा, अर्थात नरक लोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को समझाते हैं, नाना प्रकार के कार्य करने से नाना प्रकार की गति की प्राप्ति होती है, और हमें हमारे कर्मों का फल इन अलग अलग लोकों में भुगतना पड़ता है, चाहे वह स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो इत्यादि। तो ये भौतिक ब्रह्मांड में कष्ट, संकट, दुख क्यों आता है? क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप एकमात्र कारण है जिसकी वजह से संसार में दुख और कष्ट होता है, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान की वजह से हम पाप करते हैं, पाप की वजह से कष्ट और दुख सहन करना पड़ता है। कहां सहन करना पड़ता है? कभी कभी नरक लोक में भी जाना पड़ता है। तो ये समझाने के लिए पांचवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरक लोकों का वर्णन किया है, और बताया है कि किस प्रकार के पाप के लिए कौन से प्रकार के नरक लोक में जाना पड़ता है। बहुत विस्तार में उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो ये सब वर्णन सुनने के बाद में परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनको बड़ा आश्चर्य ये होता है कि ये सब दुख भुगतने के बाद भी, ये जानने के बाद भी पाप करने से इतना कष्ट भुगतना पड़ेगा, नरक लोक में जाना पड़ेगा, फिर भी लोग अपने आप को सुधारते नहीं हैं। अब परीक्षित महाराज ने यह भी याद किया, याद कराया सुखदेव महाराज को, ये निवृत्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जो सीधे ये मंदिर तक आता है,
है ना, जो भी मार्ग आपको ये मंदिर तक पहुंचाता है ना वो निवृत्ति मार्ग है। भले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो भी मार्ग दिया नाम दिया हो, लेकिन जो भी मार्ग यहां राधा गिरिधारी के चरण कमलों में आता है ना वो मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये मुक्ति का मार्ग है, ये संसार के बंधन से छुटकारा पाने का जो मार्ग है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। उसके विपरीत कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है भोग का मार्ग, भोग का मार्ग अर्थात पाप का मार्ग, जिसको करने से हमें नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेना पड़ता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म मृत्यु बढ़ापा बीमारी ये चार चीजों का पुनः पुनः दर्शन करना पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये निवृत्त मार्ग का जो वर्णन किया था सुखदेव परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज अब सोच रहे हैं छठे स्कंद में कि एक दिशा में आपने नरक लोकों का वर्णन किया है और नरक लोकों से छुटकारा पाने का जो निवृत्ति मार्ग है उसका भी वर्णन किया है, तो ये क्यों है कि लोग ये निवृत्त मार्ग के ऊपर चलते नहीं है और अपने आप को कष्ट से बचाते हैं, क्यों नहीं ऐसा करते लोग? तो बड़े चिंतित थे परीक्षित महाराज। देखिए यह है वैष्णव की पहचान। वैष्णव जो होते हैं वो अपने लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए वो चिंता करते हैं, अपने दुख को नहीं मानते, इसलिए उनको कहते हैं पर दुख दुखी। पर दुख दुखी का मतलब है दूसरों के दुख में वो दुख लेते हैं, यह है वैष्णव। ये बताया जाता है कि वास्तव में तीन प्रकार के लोग होते हैं, वो है असुर, सज्जन और वैष्णव। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए इनका वर्णन क्या है। असुर कौन है? असुर वो है जो दूसरों के सुख से दुखी होता है। दूसरा सुखी होता है तो हाय हाय करता है, अरे रे 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 उसको क्यों मिल गया, वो प्रगति क्यों कर रहा है, मुझे मिलना चाहिए था, उसे आनंद क्यों मिल रहा है, तो दूसरों के सुख में दुखी होता है और दूसरों के दुख में क्या होता है? सुखी होता है। अरे वाह मजा आ गया, उसको कष्ट आ गया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, उसके घर में इनकम टैक्स वाले आ गए, अरे वाह बहुत मजा आ गया, तो उसके दुख में सुख लेता है, यह है असुर, असुर प्रवृत्ति। अब ज्यादातर संसार में असुर प्रवृत्ति ही है। आगे बढ़ना है तो दूसरे को खींच नीचे खींचे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? ये संसार में प्रगति करनी है, ऊपर जाना है तो दूसरे के सर को कुचल कर फिर आपको ऊपर जाना है ना? यही तो चल रहा है, हर जगह हम देखते हैं। तो ये है असुरी प्रवृत्ति। फिर दूसरे हैं सज्जन। अब सज्जन क्या चाहते हैं? दूसरों को दुख ना हो, सब सुखी रहें, लेकिन हम भी सुखी हो जाएं। सब सुखी रहें, है ना, सब हम भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहो, सब सुख से हम रहेंगे, यह है सज्जन। लेकिन इसमें कठिनाई यही है कि भगवान बताते हैं कि यह दुखालय मशाश्वतम है। हालांकि सज्जन चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहें, सुखी तो हम रहने वाले हैं नहीं, दुख तो आते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक दुख तो आते रहेंगे, तो सज्जन इसलिए बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनके परे है वैष्णव। वैष्णव क्या है? दूसरों के दुख में क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव और एक है कि दूसरों को दुख देने के लिए अपने आप को दुखी करता है, इसमें कोई चिंता नहीं करता, वो सोचता नहीं है कि मुझे क्यों दुख मिले उसके लिए, मुझे भले ही दुख मिल जाए लेकिन उसको सुख मिल जाए, यह है वैष्णव की पहचान। इसलिए पर दुख दुखी। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, बड़े गहरे विचार में पड़ गए परीक्षित महाराज कि यह सब नरक लोक का वर्णन है, निवृत्ति मार्ग का वर्णन है, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं तो इनके लिए क्या किया जाए, सोच रहे हैं।
ऐसे ही विचार प्रहलाद ने भी प्रकट किए हैं श्रीमद् भागवत में। जब नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद को पूछा कि अरे प्रहलाद, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तो प्रहलाद कहने लगे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। प्रायेण देव मुनियो स्व मुक्त कामा मौनम चरंत विजने न परार्थ निष्ठा। वो कहने लगे कि प्रायेण देव मुनयो, कि हे प्रभु, हे देव, प्राय ये देखा जाता है कि जो मुनिगण हैं वो क्या करते हैं, स्वविमुक्ति कामा, अपनी मुक्ति के लिए वो की कामना रखते हैं, अपनी मुक्ति के लिए वो ज्यादा से कार्य करते हैं, और क्या करते हैं, मौनम, कभी कभी मौन व्रत का धारण करते हैं, व्रजन्ति मौनम विजन्ति चरति, इधर उधर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, एक धाम से दूसरे धाम, कभी एकांत जाकर जगह में जाकर तपस्या करते हैं, कभी हिमालय में तो कभी जंगल में तो कभी यहां कभी वहां, तो अपनी मुक्ति के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन न स्व परार्थ निष्ठा, परार्थ निष्ठा नहीं है। परार्थ निष्ठा का मतलब क्या है, दूसरों को मुक्ति कैसे मिले इसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रहलाद क्या कहते हैं कि मैं ऐसे मुनि नहीं हूं, नैतान विहाय कामान स्वविमुक्षि एको, कि मैं मेरी मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं इनको आगे भेज देना चाहता हूं। तो वैष्णव वो है जो आगों सबको पहले आगे भगवान के धाम भेजना चाहता है। मैं यहां पर रहूंगा लेकिन आप जाओ, आप जाओ, मैं औरों को भेजते रहूंगा भगवान के धाम, यह है वैष्णव। देखिए, पहले के जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो राजा को मार्गदर्शन किया करते थे, वो राजा के पहले भी उनके पहले जो राजा हुए थे उनके पिता उनको भी मार्गदर्शन करते थे, बेटे को मार्गदर्शन करते थे, बेटे के बाद बेटे के बेटे को भी मार्गदर्शन करते थे, सबको भगवान के धाम में बेचते थे, खुद रहते थे पीछे। इसलिए राजा सगर की बात आपको बताई, राजा सगर ने भी ऐसे किया, उनके पास में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया, मार्गदर्शन कराया किस प्रकार से भगवान के धाम में वापस जाना है, उनको सिखाया, ट्रेनिंग दिया। फिर सगर महाराज अपने जीवन के अंत में चले गए, तप करके भगवान के धाम में चले गए, उनके पुत्र को शिक्षा दिया और उनको भी भगवान के धाम में भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो दूसरों के उद्धार के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, और दूसरों के उद्धार करने के लिए अगर खुद को भी थोड़ा कष्ट मिले तो उसको वो उसके बारे में वो चिंतित नहीं होते हैं, तैयार हो जाते हैं। जैसे वासुदेव दत्त भी थे चैतन्य महाप्रभु के लीला में, वासुदेव दत्त एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, बड़े चिंतित थे और कहने लगे कि हे प्रभु, ये इतने पापी लोग हैं, यहां पर इतने पाप कर रहे हैं कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा यह निवेदन है कि इन सब लोगों का सारा पाप जो है आप मुझ पर डाल दीजिए, मैं अपने सर पर इन पापों को लेने के लिए तैयार हूं और मैं हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन सब लोगों को आप आपके धाम में ले चलिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह सब सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, आलिंगन किए वासुदेव दत्त को और कहने लगे कि वासुदेव दत्त, तुम्हारी ये भावना देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हें नरक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं, जो भी सब ये ब्रह्मांड में है इस वक्त उन सबको मैं भगवान के धाम मेरे धाम में ले जाऊंगा। लेकिन वासुदेव दत्त ये सोच लो, ये जो एक पृथ्वी लोक है एक छोटा सा लोक है, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ये ब्रह्मांड में कितना छोटा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये संसार भौतिक सृष्टि में। जिस प्रकार से एक मस्टर्ड सीड को राई बोलते हैं ना, राय के एक थैली में कितने सारे राय के दाने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक राय को अब निकाल के रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा। उसी प्रकार से ये एक छोटे से ब्रह्मांड के सारे जीवों को मैंने उद्धार कर भी दिया तो और तो अनंत कोटि ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, तो इसलिए फिर भी मैं करता हूं, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ति कर देता हूं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वैष्णव हमेशा दूसरों के हित के लिए चाहता है। तो परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार से इच्छा रख रहे थे कि शुकदेव महाराज ये बताइए कि दूसरे लोग जन साधारण है, ये नरक गति से कैसे वो मुक्त हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस अवस्था से, तो क्या उपाय है इसके लिए। तो शुकदेव महाराज ने जवाब दिया कि ये जो भी पाप करते हैं लोग, उनके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए, और जैसे जैसे वो पापों का प्रायश्चित करते हैं वैसे वैसे पापों से मुक्त हो जाएंगे, अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनको नरक गति की प्राप्ति होगी, और जितना गहरा पाप है उतना गहरा प्रायश्चित होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ये सुन रहे थे, सोचने लगे अभी ये जो प्रायश्चित का कार्य है ये कर्मकांड के ग्रंथों में बताया है। कर्मकांड का मतलब क्या है? जब हम कोई एक भौतिक लाभ के हेतु कोई क्रिया करते हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको कर्मकांड कहते हैं। तो ये कर्मकांडी भावना से हम संसार का भोग करना चाहते हैं, और ये ग्रंथ 80 हैं जिनको धर्मशास्त्र कहते हैं, कर्मकांड के शास्त्र, जैसे मनु संहिता है, मनुस्मृति है इत्यादि। तो इन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कौन से पाप के लिए किस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। तो सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि एक कर्मकांड के हिसाब से जो प्रायश्चित का मार्ग बताया हुआ है सबको करना चाहिए, वैसे नहीं तो नरक गति की प्राप्ति होगी। तो परीक्षित महाराज ने सोचा और कहने लगे, महाराज जी मुझे ये स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? क्योंकि अपने कारण देने लगे कि सबसे पहली बात वो कहने लगे कि मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि यह पाप है, उसने सुना भी है और देखा भी है, फिर भी वो पाप करता है। उसने देखा है कि कोई व्यक्ति पाप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, सरकार उसको गिरफ्तार करती है, सजा देती है, लोग इसको धिक्कारते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, हम देखते हैं, और हम शास्त्रों से और महान भक्तों से सुनते भी हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ऐसे पाप करने से ये गति की प्राप्ति होगी। हम ये सब देखते हैं, सुनते हैं, ये सब ज्ञान होते हुए भी फिर भी हम पाप करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, तो ऐसे प्रायश्चित की का क्या मतलब है? प्रायश्चितम अथो कथम, कि ऐसे प्रायश्चित की क्या कीमत है, क्या फायदा है ऐसे प्रायश्चित करने से? और फिर परीक्षित महाराज कहने लगे कि वास्तव में जो व्यक्ति पाप जो प्रायश्चित करते रहता है और फिर से आकर वही पाप करने लगता है, कभी पाप कभी प्रायश्चित, कभी पाप कभी प्रायश्चित, तो ये वैसे ही हुआ जैसे मन्ये कुंजर शौचवत, जैसे एक हाथी का स्नान, जिस बात की पुष्टि यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे थे। तो वो कहने लगे कि जैसे हाथी नदी में स्नान कर लेता है और स्नान करने के पश्चात बाहर आकर मिट्टी अपने सर पर डालता है, तो स्नान का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। उसी प्रकार से लोग पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और फिर से जाके पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसलिए सातवां नाम अपराध, जब हरि नाम लेते हैं तो सातवां नाम अपराध कौन सा है? नाम के बल पर पाप करना। अर्थात जो व्यक्ति ये सोचता है कि हरि नाम से सारे पाप हमारे धुल जाएंगे, बड़ा अच्छा साधन मिल गया, तो चलो पाप करते रहो और पाप करो, हरि नाम ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर से पाप धुल जाएंगे, फिर से पाप करो, मजा करो, फिर से हरि नाम ले लो, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो शास्त्रों में बताया है कि ये घोर पाप है और ऐसा व्यक्ति भक्ति मार्ग में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। तो परीक्षित महाराज यही बता रहे हैं कि ऐसे करने से क्या लाभ होता है। हम देखते हैं कि अनेक जगह लोग शनिवार को रविवार को जाकर अपने जो जो भी अपने धर्म के पुजारी होते हैं या जो भी हैं पादरी होते हैं उनसे जाके कन्फेशन करते हैं रविवार के दिन, मैंने गए हुए हफ्तों में ये पाप किए हैं, मैंने ये पाप किया वो पाप किया, तो उनके यहां भी प्रायश्चित का तरीका बताया गया है। लेकिन प्रभुपाद बताते थे रविवार के दिन पुण्य का कार्य और बाकी छह दिन वही पाप कार्य, तो क्या कीमत है। लेकिन आगे परीक्षित महाराज ने कहा कि ये हमको स्वीकार नहीं है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे परंपरा में आचार्य हुए हैं वो बताते हैं सुखदेव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परीक्षित महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो दोनों को कर्मकांड की बात करने की क्या आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो भोगवाद है, भक्तों को भोगवाद से क्या लेना देना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका करते हैं कि वास्तव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे कि ये क्या जवाब देंगे, मैं जो बोल रहा हूं वो तुरंत स्वीकार करेंगे या नहीं। तो परीक्षित महाराज परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए, पास हुए, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गए, क्योंकि उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। तो उस समय सुखदेव महाराज प्रसन्न हुए और एक कदम आगे गए, परीक्षा खत्म नहीं किया, और दूसरे कदम में गए कर्म कांड से ऊपर गए ज्ञान कांड में। अब ज्ञान कांड का मतलब क्या है, देखो वेदों में तीन कांड होते हैं, कांड मतलब भाग। पहला कांड है कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड और तीसरा है उपासना कांड। तो कर्म कांड का मतलब है जैसे हमने समझाया भौतिक भोग के लिए लेन देन का जो की क्रियाएं होती हैं उनको कर्म कांड कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान कांड में आ जाता है तो थोड़ा प्रगति करता है कर्म कांड से, सोचने लगता है ये भोगवाद के हमें परे जाना चाहिए, सोचता है कि यह ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, जगत क्या है, परब्रह्म क्या है, तो जिज्ञासा करने लगता है, उपनिषद वगैरह का अध्ययन करने लगता है और फिर अपने ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान कांड, इनके शास्त्र हैं उपनिषद इत्यादि। तो फिर परीक्षित सुखदेव महाराज कहने लगे कि हाँ सही कह रहे हो कि कर्म कांड से क्या फायदा है, ऐसे जो प्रायश्चित तुम करोगे, एक पाप करते हो और उस पाप को मिटाने के लिए दूसरा सकाम कार्य करते हो, तो उससे इसका कोई अंत नहीं है, ये तो चलता रहेगा, पाप प्रायश्चित पाप प्रायश्चित। तो जब तक ये सब चलता रहेगा पाप की प्रवृत्ति जो है नष्ट नहीं होती है, इसलिए आदमी जो है पाप करता रहेगा, चाहे वो ज्ञान कांड का इस्तेमाल करे चाहे वो कर्म कांड का इस्तेमाल करे, पाप करने की प्रवृत्ति उसके अंदर से नष्ट नहीं हो गई है। इसलिए सुखदेव महाराज बताते हैं कि ये मार्ग भी सही नहीं है, क्योंकि हालांकि ज्ञान मार्ग में भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है लेकिन उसके भीतर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हो जाती है, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए प्रभुपाद जी ने इसके बारे में दो सुंदर उदाहरण दिए हैं। एक है आप जानते हैं कि बिस्तर में कभी कभी खटमल होते हैं, है ना, और काटते हैं बहुत, खून चूस लेते हैं, तो बड़े परेशान होते हैं सब लोग खटमल की वजह से, तो खटमल को मार देते हैं, नाना प्रकार के सब कार्य करते हैं और फिर अमुक मौसम में ऐसे लगता है कि खटमल खत्म हो गए, सब चले गए। लेकिन जब सही मौसम फिर से आ जाता है तो खटमल के जो जो अंडे होते हैं छोटे छोटे कोने में इधर उधर पड़े होते हैं, फिर वो उनका जन्म होता है, फिर से खून चूसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सब खटमल खत्म हो गए लेकिन वास्तव में है वो, हम देख नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जब कर्म कांड और ज्ञान कांड के कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत अगर शुद्धिकरण हो भी जाता है, कभी कभी ज्ञान कांड में जो व्यक्ति है उसको लगता है कि अभी हम पापों से मुक्त हो गए, लेकिन क्या होता है, पाप करने की प्रवृत्ति जो पाप की बीज है वो हृदय के कोने कोने में छुपे हुए हैं, इसलिए किसी वक्त भी वो बाहर निकल सकते हैं और फिर पतन हो सकता है।
इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत को कोट करते हुए समझाते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेता है, ब्रह्म भूत अवस्था की प्राप्ति भी कर लेता है, लेकिन इसमें एक खतरा यह है कि आदमी अपने आप को भगवान मानने लगता है और फिर सोचता है कि मैं मुक्त हो चुका हूं। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये खतरा है, इसलिए उसका पतन हो जाता है। और यह कृच्छ्रेण परह पदम ततम पतन चो अनादृत युष्मदम भय, अपने आप को गलती से मुक्त मानकर उसका पतन हो जाता है। और दूसरा उदाहरण देते थे, कभी कभी एक तालाब में मिट्टी होता है, जब तालाब शांत होता है तो सारी मिट्टी जो है नीचे बस जाती है, लेकिन थोड़ा एक लकड़ी लेकर आप पानी को हिलाइए, क्या होगा? धूल फिर से ऊपर चली आएगी कि नहीं आएगी? फिर से चली आएगी, गंदगी फिर से आएगी। वैसे देखा जाए तो पानी बहुत स्वच्छ लगता है, लेकिन लकड़ी से हिलाइए तो अंदर का जो भी धूल है सब बाहर चले आता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं, भले ही बहुत आगे पहुंच चुके हों, लगता है कि शुद्ध हैं, लेकिन थोड़ी काम वासना से, इंद्र तृप्ति से थोड़ा हिलाइए उनके हृदय में, क्या होगा? काम वासना फिर से उभर आती है और फिर से पतन हो जाता है। तो इसलिए कर्म कांड में भी, ज्ञान कांड में भी, पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए किसी भी क्षण ये खतरा होता है कि आदमी पाप करने के लिए प्रेरित होकर उसका पतन हो सकता है। इसलिए सुखदेव महाराज बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है केचित केवलया भक्त्या, केवला भक्ति। केवला भक्ति का मतलब क्या है? केवल भक्ति और कुछ नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति या शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति की परिभाषा है जो रूप गोस्वामी देते हैं। कहते हैं भक्ति का मतलब क्या है? अन्य अभिलाषा शून्य होनी चाहिए। केवल भगवान की सेवा की अभिलाषा जब हृदय में रखते हैं तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। ज्ञान कांड और कर्म कांड की इच्छाएं शून्य होनी चाहिए हृदय में। और जब ऐसे भावना से हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, एकाग्र चित्त से, अनन्य भाव से, इसको केवला भक्ति कहते हैं। इस वक्त हम जो कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति का मतलब क्या है? मिश्रण है हमारे भक्ति में। भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा भोग भी करते हैं। जैसे एक भक्त कभी प्रार्थना करते हैं, हे भक्त, हे प्रभु, हमारे हृदय से सारे काम वासनाओं को, भोग इच्छाओं को आप दूर कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में, थोड़ा और भोग करने दीजिए, फिर बाद में आप धुला दीजिए हृदय को। तो क्या है कि थोड़ा बहुत हृदय में अभी मिश्रण, वो गंदगी है, पूरी तरह से चली नहीं गई है, इसलिए मिश्र भक्ति है। लेकिन फिर भी मिश्र भक्ति करने से भक्तों के संग में धीरे 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 से जो भी अनर्थ है वो धुल जाते हैं और केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। ये है हमारे जीवन का उद्देश्य, ये है हमारे जीवन का परम स्थान, जिसके प्राप्ति के लिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। फिर अंत में श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे और हम भगवान के धाम में चले जा पाएंगे। तो गंगा जी में स्नान भी करना है तो इस भावना से करना है कि ये गंगा जी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं और उनके जल में स्नान करने से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये भावना से। एक संत ने बताया है कि भगवत गीता किंचित भीता, गंगा जल लव कहीं का पीता। वो कहते हैं कि भगवत गीता थोड़ा भी अध्ययन कीजिए, गंगा जल लव कहीं का पीता, थोड़ा सा गंगा जल, एक बूंद मात्र भी, थोड़े बूंद भी पीजिए। और कहते हैं कि मुरारी समर्चा, वो कहते हैं कि मुरारी की समर्चा अर्चना करोगे, कैजुअली भी थोड़ा बहुत करोगे तो क्या होगा? त्रेते तस्य यमेन न चर्चा,
कि बाद में यमराज से चर्चा नहीं करना पड़ेगा, बहस नहीं करना पड़ेगा। जब यमदूत आएंगे, अरे भाई मेरे रॉन्ग नंबर में आया हो, मेरे पास नहीं आना, उसके पास जाना, कहना नहीं पड़ेगा। पड़ोस के पास में उंगली दिखानी नहीं पड़ेगी कि उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। तो यमदूत नहीं आएंगे। जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करता है, गंगा जी का की सेवा करता है, गंगा जी में स्नान करता है, जो मुरारी श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसको यमदूतों से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे चल के सुखदेव महाराज ने अजामिल की कथा बताई कि कैसे भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक नीच व्यक्ति को भी उसका उद्धार भी हो सकता है। तो देखिए, ये है भक्ति की महिमा। तो केवल कृष्ण भक्ति करने मात्र से ही सारे हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और जीवन के परम लक्ष्य श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भगवान के भक्तों के संग में आकर उनके नामों का, पवित्र नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न है कि पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर स्वाभाविक है और अर्जुन भी यही कह रहे थे, इसलिए भक्ति मार्ग में भी जाते हैं तो हो सकता है कि पाप करने की प्रवृत्ति अभी तक पूरी तरह से नष्ट न हो, क्योंकि हम अभी तक पहले कक्षा में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हैं, अभी तक पास हुए नहीं हैं, तो क्या ऐसे समय हमें प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो प्रायश्चित की बात हम कर रहे थे वो प्रायश्चित कर्मकांड प्रायश्चित की बात होती है, मतलब कि हर एक अमुक प्रकार के पाप के लिए अमुक प्रकार का प्रायश्चित का कार्य रहता है। अगर ऐसा पाप करेंगे, ब्रह्म हत्या करेंगे, तो आपको ये यज्ञ करना चाहिए। आप ब्राह्मण का आपने अपराध कर दिया तो आपको फिर ये पूजा करनी चाहिए, ये है प्रायश्चित। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है उसको ये कर्मकांड के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति करने मात्र से ही उसके सारे पाप तो धुल जाते हैं और साथ साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में नहीं है उसको अवश्य ये कर्मकांड का प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो बेचारे नरक लोक में चले जाएगा। लेकिन कर्मकांड के प्रायश्चित करने से श्रेष्ठ है कि आदमी कृष्ण का भक्त बने, फिर कोई कर्मकांड के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भक्ति में प्रायश्चित करने का प्रश्न आता है, तो हाँ, अगर हम कोई गलत काम कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए भक्ति मार्ग में, कहीं हम भक्ति मार्ग में फिसल जाएं, तो अफसोस तो हमें होना ही चाहिए। और प्रायश्चित क्या होना है? प्रायश्चित दो चीजें, एक दृढ़ता से हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगा, यह हमारा प्रायश्चित है। और दूसरा प्रायश्चित है सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति मार्ग को छोड़े नहीं, भक्ति मार्ग को पकड़ के रहें, चलते रहें इस मार्ग पर और हरि नाम का सहारा लेते जाएं, ये जानते हुए कि कहीं कहीं हमारा पतन भी हो जाए तो सफलता जरूर एक न एक दिन आएगी। देखिए, छोटा बालक जब बड़ा होता है, चलने को सीखता है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से वो अच्छी तरह से चलता है, उठता है, गिरता है, बैठता है, खड़ा होता है, फिर से फिसल जाता है, इसी तरह से तो फिर वो आगे चलने को सीख लेता है। उसी प्रकार से हम अभी भक्ति मार्ग में, अभी शायद हमारा बचपना हो सकता है, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हम फिसल भी जाए, तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए, आगे साहस से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर फिसल भी जाए तो सोचना चाहिए कि भी और अगली बार नहीं ऐसे फिसलेंगे, ये दृढ़ता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और कोई टीका, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत प्रभु। इस मिरावर के भक्त की ओर से। और पुनः मैं कहूंगा कि इसी प्रकार का कार्यक्रम प्रत्येक संडे यहाँ पर होता है मिरावर के इस राधा गिरधारी मंदिर में। आप लोग आमंत्रित हैं और साथ में आप अपने हितेश्ची संबंधी लोगों को भी साथ में लाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो पहली दफा आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं इस हरे कृष्ण मंदिर में। और इस कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम लोग स्वागत करेंगे। और एक बार जो परंपरा चल रही है उस प्रकार और इस संदेह प्रसाद का जो अरेंज हुआ है या जिन्होंने इस प्रसाद के लिए